सेवा छोड़कर इस जगत में रिफ्यूजी होकर के आए हैं। इस जगत में संसारिक भौतिक सुखों के प्राप्त होने पर भी, जो कुछ चाहते हैं संसार की, सब कुछ मिलने पर भी, पुत्र परिवार, स्त्री पति और सब धन मिलने पर भी सुख और शांति नहीं हो सकती है यदि हम भगवान का स्मरण भजन नहीं करते। हमारे जगत में आने का, दुख भोगने का, बुढ़ापा, अभी हमको मरना भी है, ये कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। हम भगवान के बड़े प्रिय सेवक हैं, किसी कारण से भगवान की सेवा छोड़ने से हमारी यह दुर्दशा हुई है। इस जगत से एक तीन का भी नहीं ले जाना है, यह शरीर का कोई अंश भी नहीं जाएगा, यहां तक कि मन भी नहीं जाएगा। इस चीज को उपलब्धि करना चाहिए, इसलिए जीवन का उद्देश्य है किसी प्रकार से हम भगवत भक्ति का आश्रय करके इस संसार रूपी सागर को पार कर जाएं। यदि अपने शरीर को ही मैं समझ लिया और अपने शारीरिक संबंधियों को ही अपना माना और भगवान को और जीवात्मा को नहीं समझा, फिर आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, बड़े दुख होंगे। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इस शरीर में जाओ और हमारा भजन करो, जल्दी से जल्दी हमारे पास में आ जाओ। किंतु आए थे हरि भजन को, ओ तन लगे कपार। विशेष करके भगवान ने बड़ा ही सुंदर शरीर दिया, स्त्री का दिया या पुरुष, और वो हमारे अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर सुकांत हैं, आंखें अंधी नहीं है, पैसे लंगड़े नहीं है, लूले नहीं है, बुद्धि भी ठीक है। विशेष करके इतना सौभाग्य भगवान ने दिया कि वृंदावन धाम में आकर के साधु संग कर सकते हैं। किसी का तो यहाँ पर जन्म हुआ, किसी की यहाँ पर शादी हुई, और कोई नौकरी चाहकर व्यवसाय वाणिज्य के वजह से ही जगत में इस वृंदावन में धाम में पधारे, जहाँ पर यमुना जी प्रवाहित हो रही है, गिरिराज जी पासी में है, जहाँ पर बंसी भट्ट है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, वो सेवा कुंज है, निधुवन पास में है, इमली तला है, श्रृंगार भट्ट है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, ये समझो गोलोक वृंदावन साक्षात धाम में हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसा समझो। और तभी भगवान का भजन नहीं करते, श्याम सुंदर का भजन नहीं करते, सर्वोपरि श्रीमती राधिका जी का भजन नहीं करते, आश्रय नहीं लेते। हमारे जीवन को धिक्कार है, कोटि कोटि बार धिक्कार है। अरे मर गए तो सुकर भी होंगे तो सुकरी तो मिल ही जाएगा, अरे गधे यदि होगी गधी हुई तो गधा तो मिल ही जाएगा, पुत्र भी संतति सभी कुछ मिल जाएंगे, किंतु हरि भजन का चांस फिर नहीं मिलेगा। अभी जो वृंदावन में आ रहे हैं, ये फिर आने का सौभाग्य कभी जीवन में नहीं मिलेगा यदि इस अवसर को चूक गए। इस चीज को गांठ बांध कर रखिए, आपका धन संपत्ति वैभव प्रतिष्ठा कुछ भी काम में नहीं आएगा, ये समझ रखिए। जिसके लिए कर रहे हैं वही आपके विरोधी होंगे, इस चीज को भी अच्छी तरह से समझिए। जिन लोगों को कर रहे हैं वो लोग भी कभी प्रसन्न नहीं आपसे होंगे, और अंत में आपके शरीर को जला देंगे, ये भी ध्रुव निश्चित है। इसलिए समय रहते हुए हमको चेतना चाहिए और अभी से भजन करना चाहिए। आज एक बच्ची का हम संस्कार कर रहे हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, पली है, पोषी है, बड़े लाड़ प्यार से, किंतु इस बच्ची का ऐसा संस्कार किया जाए जो अभी बचपन से ही भगवान का भजन कर सके, और शास्त्रों के अनुसार में इसका जीवन आचार हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अनुसार में हो। पहले जन्म का संस्कार होता था, गर्भाधान का संस्कार होता था, जन्मने के बाद में उस बच्चे का संस्कार होता था, नामकरण होता था,
अन्न प्राशन
होता था, माने उसको ठाकुर जी का प्रसाद दिया जाता था,
जो
उपनयन होता था, उपनयन माने उपनयति, उपनयन की जिस विद्या के द्वारा हम भगवान के समीप में पहुंच जाते हैं या वह विद्या हमको जहां ले जाती है उसको उपनयन कहते हैं। दीक्षा सर्वोपरि, गुरु के यहाँ से दीक्षा का संस्कार होता है,
जिसमें वो भगवान के साथ में संबंध रख करके वो भजन करता है। अंत में भव सागर को चुटकी बजाते हुए पार कर जाता है। मालूम नहीं कभी हम कब पहुंच गए उस पार में, नौका इधर ही में खड़ी रही नाम की, और पहुंचा दिया उधर में, कुछ भी मालूम नहीं होगा कैसे अनायासी पा जा सकते हैं भगवान को। और जिन लोगों ने इस मनुष्य जन्म को खो दिया संसारिक कर्तव्यों में, संसारिक इन विषयों में, संसारिक प्रतिष्ठा में, संसारिक धन संपत्ति को जुगाड़ करने में, संग्रह करने में, उनका जीवन यों ही चला जाएगा। सिकंदर महान क्या ले गया, हजारों स्त्रियों को लूटा, सुंदरियों को, और सोने पक्षों में गहनीर हीरा जवाहरात सब लेकर के गया। कंधार में बीमार पड़ गया, मरने लग गया। जब सारे सेनापतियों को बुलाया, कहा हमारा खजाना हमारे सामने खोलो जो विश्व से हमने लूटा है, और हमारी प्यारी सुंदरी लड़कियों को जिसको हमने जीत करके लाया है उनको भी खड़ी कर दो। कहा ये सब सारी संपत्ति को कोई ले ले, हमको एक मिनट के लिए जीवन दान करे और हमको शांति दे दे, मैं ये चाहता। मर गया जिसके नाम से जगत के लोग थर्राते थे, अब उसके नाम से एक पक्षी भी नहीं उड़ती, एक चींटी को भी भय नहीं। इसलिए जीवन का मूल्य नहीं, जीवन की संपत्ति का मूल्य नहीं, भगवान का भजन करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य। अभी मैं अमेरिका इत्यादि पश्चिमी देशों में गया था, बड़े समृद्ध, सबसे बड़े समृद्ध इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ये विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हैं, बड़े बड़े समृद्ध धनी देश हैं। देखा जो कहीं शांति नहीं, जहां ये सब बातें कहता था वहां पर हजारों की भीड़ लग जाती, बड़े बड़े धनी अमीर सभी लोग हमारी बातों को सुनते, और उसमें अधिकांश लोग हमारी इस वैदिक संस्कृति का, भगवान का भजन करने को अपनाया, इसमें शांति है। किंतु और चीजों में शांति नहीं है। इसलिए यदि गृहस्थ हैं घर में काम कीजिए, अपना जो कर्तव्य है वो कीजिए, किंतु साथ साथ में भगवान का भी भजन कीजिए, और वो भी ऐसे तैसे नहीं, अनन्य चित्त से। किसका भजन करें, जो सर्वोपरि है, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ये कृष्ण है, ये ब्रज। यदि ब्रज में इनका भजन नहीं किया, बेकार जीवन। विशेष करके कृष्ण का भजन करने पर भी यदि राधा जी का भजन नहीं हुआ तो आतप रहित सूरज नहीं है। जिस सूर्य में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, गर्मी नहीं है, वह सूर्य सूर्य नहीं। तो ये रोशनी के स्थान पर ये श्रीमती राधिका जी हैं। कृष्ण का भजन करते हैं राधा जी का नहीं तो वो बेकार का जाएगा, किंतु राधा जी का अकेले भी करेंगे तो कृष्ण जरूर वहां रहेंगे। इसलिए राधा जी के साथ में उनकी उपासना होनी चाहिए। इसलिए इस बेटी का संस्कार ऐसे सेवा कुछ वृंदावन में, एक तो भारतवर्ष किस लिए प्रसिद्ध, इस ब्रज के लिए। यदि भारतवर्ष में ब्रज नहीं रहता तो भारतवर्ष का मूल्य भी वैसे ही जैसे पश्चिम देशों का है। इसलिए भारतवर्ष का मूल्य वृंदावन के वजह से है, और वृंदावन का मूल्य किस लिए, जहां पर सेवा कुंज, निधु वन, बंसी वट, श्रृंगार वट ये है, वहां आज उसके बीच में बैठे हुए इस बेटी का हम संस्कार कर रहे हैं। ये भगवान के भजन में बाल्य काल से ही, बुढ़ापा होने पर आदि भजन नहीं करता, बचपन से जिसका संसार अनायास रूप से भगवान का भजन कर सकता है या कर सकती है। इसलिए आज हम इसका संस्कार कराते हैं। आप लोग जैसा हम कहेंगे वैसा आप लोग पीछे से उच्चारण करेंगे और इस बेटी के ऊपर में आशीर्वाद करेंगे, जय कृष्ण इसके ऊपर में प्रसन्न हो, वृंदावन बिहारी प्रसन्न हो, श्रीमती राधिका जी प्रसन्न हो, और उसकी भक्ति इसके हृदय में संचरित हो, इसके लिए आशीर्वाद हम लोग करेंगे। ऐसा ही अपने अपने घरों में केक मत काटेंगे बच्चों के जन्म दिवस में, और कैंडल जलाने की जरूरत नहीं, बल्कि वर्ष गांठ पर, वर्ष के जीवन पर जब उसका जन्म होता है या कोई हम वर्ष गांठ मनाते हैं, उतना प्रदीप थाल में रख करके आरती ठाकुर जी की कराइए, भगवान का प्रसाद लगाइए और उनको लोगों को, ऐसा भारतीय संस्कृति के अनुसार में सब कुछ होना चाहिए। पाश्चात्य देश के लोग उब चुके हैं उस संस्कृति से, रुपये धन की कमी नहीं किंतु कमी है शांति की, उनको सुख और शांति नहीं है। उसके लिए भारतवर्ष की तरफ में वो लोग देख रहे हैं। बोलिए आप लोग सभी लोग, और हाथ में चावल है, ये आशीर्वाद स्वरूप है, जब मैं पूरा कर दूंगा स्वस्ति स्वस्ति करूंगा तो इसके ऊपर में छोड़ेंगे जैसा हम बतलाएंगे। ओम स्वस्तिनो
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 गोविंदः
गोविंदः
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
अच्युतानन्तो
अच्युतानन्तो
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
वासुदेवो
वासुदेवो
विष्णुर्दधातु
दधातु
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
नारायणो
नारायणो
नरो वै
नरो वै
स्वस्तिनः
स्वस्तिनः
पद्मनाभ
पद्मनाभ
पुरुषोत्तमो
पुरुषोत्तमो
दधातु
दधातु
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
विश्वक्षेनो
विश्वक्षेनो
विश्वेश्वरः
विश्वेश्वरः
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
ऋषिकेशो
ऋषिकेशो
हरिर्दधातु
दधातु
हरिर्दधातु
हरिर्दधातु
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
वैनतेयो
वैनतेयो
हरि
हरि
स्वस्तिनो
स्वस्तिनो
अञ्जनासुतो
अञ्जनासुतो
हनु
हनु
भागवतो
भागवतो
दधातु
दधातु
स्वस्ति
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 सुमंगलैकेशो
सुमंगलैकेशो
महान्
महान्
श्रीकृष्णः
श्रीकृष्णः
सच्चिदानन्दः
सर्वेश्वरेश्वरो
सर्वेश्वरेश्वरो दधातु
दधातु
ओम
ओम
मंगलं भवतु
मंगलं भवतु
ओम
ओम
मंगलं भवतु
मंगलं भवतु
ओम
ओम
मंगलं भवतु
मंगलं भवतु।
मंगलं भवतु भवतु
दुःखमानन्दे
और ठाकुर जी का आरती कराओ तो आरती 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 करने के बाद में आप लोग सब प्रसाद पाएंगे सभी लोग, और प्रसाद पाने के बाद में फिर हमसे भेंट करके तब शाम को जाएंगे। सिंघानिया जी भी सभी लोग बैठेंगे प्रसाद सबकी व्यवस्था करना। आरती करो। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
में घुमड़ घुमड़ करके बरसाते हैं। वाह बहुत सुंदर। मयूर भी कूकते हैं, झूले झूल लग रहे हैं राधे श्याम जी के झूले चारों तरफ में निराली छटा। या वृंदावन बैकुंठ से भी बहुत बहुत ऊपर नहीं सुनाई पड़ता।
अरे यहाँ के ना सिस्टम में थोड़ा चेंज कराना चाहिए।
कैसे? यहाँ से तो बड़ा सुनाई पड़ता
है।
तो यहाँ इको नहीं रख करके उधर से ही होना चाहिए।
छत पे चले जाना महाराज, वहाँ अच्छी आवाज आती है। आप यहाँ बोलो छत पे अच्छी आवाज आती है,
तो यहाँ आनी चाहिए ना। एक तक कोनो व्यवस्था करना है। तो अभी देखो कर लगा दो। ए राधे श्याम ने की उतर लगा तो थोड़ा सा ऐसा रखना है जिससे कोई आए तो दर्शन कर सके। You should give some space that if anyone wants to take darshan, he can easily come and take darshan. Some space should be given. Don't sit close to temple. पहले हम अपने परमाराध्यतम शिष्य गुरुदेव जी के संन्यास गुरु और गुरु भाई संन्यास गुरु पूज्यपाद तिरोभाव थे अपूज्य पाशीधर महाराज बस यस्टरडे आई पे माई हार्टली ओबेसेंस इन हिज लोटस फीट. He was one of the dearest disciples of Jagat Guru Nitya Lila Pravishnam Vishnu Parthi Shila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Thakur. So, Prabhupada Shila Bhakti Siddhant Saraswati gave him the title of Bhakti Rakshak Sridhar. Sometimes I used to explain Gayatri and I used to tell that Aumo indicates Krishna, Rashik Shekhar Krishna Sarva Shaktiman. He can do everything which is impossible he can do. So he is Sarva Shaktiman. He is so beautiful. He is ocean of rush. And from him his so many incarnations can create this world in a moment. Like Garbhodishai Vishnu. He had not to deal with this world directly, but indirectly he does everything. So Krishna denotes that Brahma, Parabrahma. And O Karanya Uchyate Radha, Sarva Shakti Mati Radha, whose embodiments are Lalita, Vishakha and all, Kaya Vyuha, and whose manifestations are in Dwarka, queens like Satyabhama, Rukmini and all, and in Parabhyam, Lakshmi and all others. So Radha is Sarva Shakti Mati. अकारण उच्यते कृष्ण ओकारण उच्यते राधा मकारो जीव वाचक एंड म इंडिकेट्स ऑल दी जीवास हू आर दी सर्वेंट्स आर मेड सर्वेंट ऑफ दैट कृष्ण. सन shines in this world, illuminates this world. But how he can illuminate the power of Sri Krishna, that is Srimati Radhika Dhimahi, Vidhimahi, Vimai means?
Meditate.
To meditate. We are meditating. Sapitur varanyam Vargah Devasya Vargah Devasya Vargah Teja Shakti of Krishna. Who is she? Srimati Radhika. Srimati Radhika gives energy, heat, power, everything that sun can illuminate this world. So we dhimahi, we meditate Srimati Radhika. And he should manifest in our heart. Ji Goswami has given this explanation. I am telling in very short. I heard when I went to America, United States of America, I heard one disciple of Param Pujya Pasidhar Maharaj told a shloka written by Sridhar Maharaj. Same thing. Bhargava Devasya, he is explaining that is Hladini Shakti. Bharga means Hladini Shakti. Who illuminates sun? So she should manifest in our heart with Krishna. I became so glad that Siddhartha Maharaj Swami has explained like so. I have never heard any Vaishnava explain like this. So I became. So our Guru Maharaj took sannyas from Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati first. Where? In Navadvip. You know how?
Yeah.
When the gundas of Kulia Akraman kar rahe the, attacked Srila Prabhupada with whole Yatris
Parikrama
party. Then at once Guru Maharaj extended his claws and he took the Prabhupada took the white dresses of my Gurudev and Prabhupada gave his danda, his danda especially, and his own claws, everything. Only name was not given. Otherwise everything was given that time. I think that this is actual sannyas of our Gurudev. And Prabhupada has told himself. In dreams he told him
three times,
why you are not taking sannyas at once? My whole preaching will be upset and spoiled. So must you should take sannyas. Then at third time he decided that whether I have taken sannyas internally and Prabhupada has given the sannyas to me, but now openly I should
externally
I should take sannyas. To whom, from whom he will take sannyas? So he decided that Sripad Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj is quite qualified to give this, because sometimes Guru Maharaj and Sridhar Maharaj exchanging their thoughts and siddhant, cutting arguments of each other. But proof and logic Sridhar Maharaj used to give, or Guru Maharaj used to cut at once by another arguments. And when our Guru Maharaj used to establish any siddhant, he used to cut up. All the Vaishnavas, very learned persons of our Gaudiya Vaishnava, used to hear it so patiently. Once I know, I was with my Gurudev after he has taken sannyas from Sridhar Maharaj. I myself, Pujyapad Baman Maharaj, Pujyapad Tribhika Maharaj, we three went to Sridhar Maharaj. Every year, our Gurudev used to go after Parikrama to pay respect to Sridhar Maharaj. Though Sridhar Maharaj was junior from my or Gurudev, so much junior. Even Baman Maharaj is senior than Pujyapad Sridhar Maharaj. He came first, joined first from Sridhar Maharaj also. Sridhar Maharaj came after Baman Maharaj. But he was a very little boy. But what is he telling?
1930.
1926. Oh, then it may be. But I have heard like so. But I will inquire more. Then Guru Maharaj decided to take sannyas from Pujyapad Sridhar Maharaj. Though he was junior, our Guru Maharaj joined our mutt, Prabhupada, in 1916. He took Harinam from Srila Prabhupada, and in 1918 he took Diksha and he became Brahmachari her whole life. At that time so many very little number of Brahmacharis and Matvasi was there when our Guru Maharaj was there. He joined in very early when there was no Mutt anywhere. So he decided that I should take sannyas only from Pujyapad Sridhar Maharaj. He proposed this and they at last decided to go to Katwa. And in Katwa, where Chaitanya Mahaprabhu has taken sannyas, he took sannyas there with Pujyapad Sridhar Maharaj. Guru Maharaj told all the facts to Pujyapad Sridhar Maharaj. That Prabhupada had given dream, sannyas, and then he told that I have some like a gleam that bhakti pragyan, my name is anything. He told that this name is very good. Bhakti pragyan Keshav means. Pragyan means vigyan. Pragyan, that is vigyan. Prakrishna rupena jnana and vigyan vishesh rupena jnana. Of bhakti, Krishna tattva and all things. So this name was kept. He used to glorify our Gurudev to us. When he used to go to him, so many things, so many, or Guru Maharaj's life sketch, I have heard from Pujyapad Sridhar Maharaj, that when he came, joined the Gaudiya Mutt, I saw a very little boy of little age, sitting on the chair, what? Trembling his face on the desk, and very good horse was there, and a stick, very good stick, cane stick was there, wearing very good dresses, or Shanti Puri Dhoti. And sannyasis are coming and going down to him, and he gives orders or anything what they ask. Who is he? Pujyapad Sridhar Maharaj. He has left the law college and he has come only to see what is this Gaudiya Mutt. And he saw our Gurudev. Then he asked someone that who is he? They told that he is Vinod Brahmachari. He is now the manager of this place, and he has taken all these places from Mohammedans, clearing their grapes from there, and he has made it a very interesting and very beautiful place where the Prabhupada Samadhi is now there. So when he used to go to him, always he used to tell so many Siddhant, good Bhakti Siddhant, so many things. All used to know him. He was famous for his Darshanik Siddhant Vichar. Anything in Siddhant was here and there, any doubt, all used to go to our Gurudev and Pujyapad Sridhar Maharaj, especially Sridhar Maharaj and Gurudev. Yesterday his disappearance day was there. We want to Pushpanjali offerings and the lotus feet of Pujyapad Sridhar Maharaj, Goswami Maharaj. He should be pleased. We know that he cannot die. It was so highest class of Uttam Vaishnava Adhikari. Any Vaishnava did not die. So we pray that his mercy should be come to us, because he was so merciful. And we can serve our Gurudev like they have served their Gurudev. अब हम लोग श्रीमद्भागवत के श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भगवतामृत के अंत में श्रीमद्भागवत और ब्रह्म संहिता और दूसरे श्लोकों को उद्धृत कर उसकी ऐसी सुंदर व्याख्या की है जिसे मालूम पड़ता है कि हमारे संप्रदाय के वो आदि गुरु हैं। आदि गुरु कौन है हमारे संप्रदाय के? स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी हैं। स्वरूप दामोदर जी ने अपनी सारी चीजों को, अपने सारे भक्ति के सिद्धांतों को और रस शास्त्र को चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से रूप गोस्वामी के अंदर में संक्रमित किया था। महाप्रभु जी ने अपने अपने परिकरों को बहुत से भार दिए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन्होंने वेदांत का जो भाष्य श्रवण कराया था उनको आदेश दिया, उनके आदेश से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने शिष्य क्या नाम था मधुसूदन वाचस्पति के माध्यम से जी गोस्वामी को सारा सिद्धांत संक्रमित किया। इसलिए ऐसे हो सके वो, विशेष करके नित्यानंद प्रभु की उन पर कृपा थी। जी गोस्वामी उनको प्रचार करने का आदेश दिया था, नित्यानंद प्रभु को बंगाल में जाकर के प्रचार करने का, उसको अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु जी ने, नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु के माध्यम से सर्वत्र प्रचार करा नित्यानंद प्रभु जी ने, अद्वैत आचार्य ने। रस शास्त्र की व्याख्या उन्होंने रूप गोस्वामी के द्वारा संक्रमित करके कराया, किंतु कुछ बाकी रह गया। बाकी क्या रहा? कृष्ण तत्व, रस तत्व सबका विचार जीव गोस्वामी उन्होंने हमारे रूप गोस्वामी ने दिए, अलग अलग उसका विश्लेषण किया। शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, और उसके समस्त उपकरणों को भी उन्होंने अलग अलग देखाया। उपकरण क्या? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, अलग अलग सब दिखलाया। और इसके द्वारा भक्ति रस के रूप में भक्ति रस बनती है, ये तो दिखलाया, किंतु कितने परिमाण में कैसे मिलाने से वो रस होता है ये नहीं दिखलाया। ये कौन दिखलाया? रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दिखलाया। क्यों दिखलाया? उसके लिए योग्य पात्र थे, क्योंकि उनके गुरु थे स्वरूप दामोदर जी। पहले गुरु कौन है? जदुनंदन आचार्य, और उसमें मिल गए हरिदास ठाकुर जी, हरिनाम का रस उसमें दे दिया।
जो बाकी रहा चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका हाथ पकड़कर स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया। स्वरूप का रघु, स्वरूप रघु, स्वरूप का रघु, उनसे सारी शिक्षाओं को पाया। और महाप्रभु जी के सभा में जाकर के बैठते थे सबसे छोटे बच्चे, और वहां पर जो जो कुछ विचार होता था रस सप्त का, वहां पर क्या गंभीरा में क्या विचार होता था, महाप्रभु भाव में भी भोर होकर के कहां समुद्र में गिर गए, कैसे गिर गए, उनके भाव कैसे हुए। महाप्रभु जी कह रहे हैं हमको क्यों यहां पर ले आए, मैं तो जमुना में राधा कृष्ण का की लीलाएं हो रही थी और मैंने वहीं से बंसी सुनी और वहीं से आया और वहां पर रास में मैं सम्मिलित हो रहा था और तुम लोग हमको यहां से ले आया। और रोने लगे। ये सबको उन्होंने देखा सुना कि नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी, सारी महाप्रभु जी की जो लीलाएं गंभीरा में हुई बहुत निकटतम से उन्होंने देखा, और देख करके रूप गोस्वामी का फिर कृपा हुई उन पर, और उन्होंने रस शास्त्र का सारी बातें उनको बतला करके रस कैसे बनता है उन उपकरणों के द्वारा, स्थाई भाव के ऊपर में सामग्रियों के द्वारा इसका पूरी तरह से विश्लेषण करके, और उसको कैसे वो होता है ना, कौन सा घर जिसमें कि ये सब बनाते हैं, कैसे मिलाते हैं, कौन सा रूम होता है हमको याद नहीं आ रहा, लैबोरेटरी में जैसे चीजों का वो बनती है ना, कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, ऐसे लैबोरेटरी रूप गोस्वामी के लैबोरेटरी में ये गए और वहां पर सीख करके और तब उन्होंने बनाया रस शास्त्र। बिना रघुनाथ दास गोस्वामी से कृपा से हम उनको नहीं समझ सकते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल निर्मित ग्रंथों को, और कृष्ण लीलाओं को हम नहीं समझ सकते हैं ये कैसे रसमयी है। कृष्ण कहीं जा रहे हैं गोचारण करने के लिए और राधा जी ऐसे देख रही हैं और देखते रह गई। अब इसको क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या है ये, इसको कहेंगे भाव। हाव क्या है, लीला क्या है, हेला क्या है, ये सब को रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन दिया और कार्य में परिणित कौन किया उदाहरण दे करके, दास गोस्वामी, उन्होंने इस चीज को पूछा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी कृपा एकत्रित करके ये जितनी अनुभूतियां और सारे कर्चे लेकर के कृष्ण द्वारस्वामी को, उन्होंने चैतन्य चैतामृत की रचना, इसलिए चैतन्य चैतामृत ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा विशेष रूप से ये निकली या सारे गोस्वामियों की कृपा उसमें निहित है, ऐसा समझना चाहिए। किंतु ये सब चीजों को पहले प्रकाश में कौन लाया, श्रीमद भागवत का जो अर्थ जीव गोस्वामी ने किया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दिग्दर्शनी में जो किया, दिग्दर्शनी नाम है सारार्थदर्शनी में जो किया, ये कहां से आया, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथों को बनाया, ये कहां से आया, इन महाप्रभु से तो आया किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से आया, इसलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के गुरु हैं। किंतु सनातन गोस्वामी कहते हैं जो बिना रूप कृपा के महाप्रभु जी की और राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलती, इसलिए मैं उसका आश्रय करता हूं। देखो तो शिष्य के लिए गुरु कह रहा है जो उसकी कृपा के बिना, गुरु तत्व क्या है इसको समझना साधारण चीज नहीं है, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं मर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को कब उन्होंने दीक्षा दी, रूप गोस्वामी को, जो रूप गोस्वामी कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, रूप गोस्वामी के गुरु कौन है, सनातन गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं ये रूप गोस्वामी, और कहीं कहीं पर देखा जाते महाप्रभु ही दोनों के गुरु हैं। तो महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को दीक्षा दी ना, सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, किसने दी, अरे भाई ये बाहरी दीक्षा नहीं है, यही भागवत परंपरा है, इसको समझो भागवत परंपरा क्या है। भागवत परंपरा के अंतर्गत में ये परंपरा शिष्य परंपरा गुरु परंपरा निहित है, ऐसे हमारे गुरु जी कहते हैं, उसके अंदर में अंतर्भाव्य है, अंतर्भूत है, इसलिए हमारे संप्रदाय में इस भागवत परंपरा पर अधिक जोर दिया गया है। श्रील प्रभुपाद ने जो गुरु परंपरा दी है अथवा इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने जो दिया है अथवा सबसे पहले दिए हैं हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, कहां पर दिया,
सब
क्रिया सार दीपिका। और उसके बाद में कौन दिया? कभी कर्ण को कहां दिया? उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया। और उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण ने उस परंपरा को दिया। इसमें भागवत परंपरा की प्रधानता है। प्रभुपाद ने तो स्पष्ट रूप में शंख ध्वनि से एकदम घोषित किया पंचजन्य बजाकर, और इसी पे बहुत से लोग चिढ़ते हैं। तो इस तरह से अब ये भी समझ में आना है, भागवत परंपरा किसको कहते हैं और गुरु परंपरा किसको कहते हैं, ये भी समझना बहुत कठिन है। इसलिए बहुत से लोग सहजिया लोग प्रभुपाद को नहीं समझ पाते हैं, चिढ़ते हैं। तो उस सनातन गोस्वामी ऐसे जो हैं, जो रूप गोस्वामी को भी शिक्षा दी, बृहद भगवतामृत हमारे संप्रदाय का अमूल्य ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ, जिसके पढ़े बिना कभी भक्ति रस का ज्ञान नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकते, ऐसा अमूल्य ग्रंथ है। जब इसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो जीव गोस्वामी के और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी से पहले और कृष्ण वो क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से पहले उन्होंने भागवत की कान ये किया है, टीका लिखी है, वो यही टीका यही है, यही सब बृहद भगवतामृत उन्होंने दिया है और लीलाओं का विश्लेषण किया है ना? इसलिए हम लोग बृहद भगवतामृत कुशल हैं, बहुत अच्छे। तो बृहद भगवतामृत को हम जब देखते हैं तो सिर अपने आप झुक जाता है। सनातन गोस्वामी ऐसे नए नए विचार दिए जो चैतन्य महाप्रभु से पहले कोई नहीं बतलाता था, ऐसा इन्होंने विचार दिया। उनका विचार हम कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आज हम उन्हीं में से, इसके पहले हमने उस श्लोक की व्याख्या की थी, धन्यम धरणी, धन्यम धरणी की, धरणी की वंदना। उनसे उनको हृदय में उतना उल्लास नहीं हुआ, कहा तो सब कुछ। अरे धरणी किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए सौभाग्यवती है? ये वृंदावन के लिए ना, इसलिए वृंदावन धन्य है, वृंदावन के लिए ये धरणी धन्य जिसमें वृंदावन है। और वृंदावन का ही वर्णन किया उसमें, ये वृंदावन के ही गुल्म लता वृक्ष गो गो गोपियां ये सब वहीं की धन्य है। यहाँ पर स्पष्ट करके कह रहे हैं वृंदावनम, वृंदावन सखी भुवो वितनेत कृतिम जद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मयु मत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादिस्वान अवर्तान समस्त सत्वम। वृंदावन सखी भुवन वितनेत कृतिम, अब स्पेशल रूप में वृंदावन की ये व्याख्या कर रहे हैं। वृंदावन माने क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बड़े अच्छे ना ना डोंट डोंट ए अरे मत ना बोलिए ए कम ऑन कम ऑन यू डोंट डोंट डिस्टर्ब दे शुड टेल डोंट डिस्टर्ब एनीवन। वृंदावन, वृंदा का वन, वृंदा का वन, जिस वन में बेली चमेली जूई इत्यादि की प्रधानता नहीं है। यदि वैजयंती माला में तुलसी न रहे और तुलसी की मंजरी न रहे तो वैजयंती का उतना मूल्य नहीं, उस पर मधुमक्खी मधुकर नहीं आएंगे। मधुकर आते हैं किस लिए? विशेष करके तुलसी मंजरी के लिए आते हैं, कृष्ण की बड़ी प्रिय है। उस वृंदावन में वृंदा की प्रधानता है, तुलसी की। तुलसी और वृंदावन में कुछ वैशिष्ट है, दोनों एक होने पर भी एक नहीं, वैशिष्ट है। जो वैशिष्ट ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में और नारायण में है, नारायण उनके वैभव प्रकाश हैं, किनके? कृष्ण है। है ना, कृष्ण स्वयं रूप है और नारायण उनके वैभव प्रकाश है। ठीक वैसे ही वृंदा जी स्वयं वृंदा है। कौन है वो वृंदा? ये वृंदा कौन है? ये राधा कृष्ण का मिलन करने वाली ये वृंदा जी हैं। कृष्ण की राधा जी की सहेली हैं, दोनों में संभव। कभी राधा जी को और कभी कृष्ण को झुका देती हैं, आवश्यकता अनुसार से लाती हैं। ये वृंदा जी, वृंदा जी का विवाह कहाँ है? वृंदावन में ही। यहाँ ये जो वृंदावन है जहाँ हम लोग बैठे हैं, इनके माता पिता यहीं पर रहते हैं और यहीं के गोप उसमें आता है कुछ प्रसंग। ये उनकी पहले शादी थी, उनका पति व्रत भंग करके शंखचूड़ को मार करके फिर तुलसी जी से उन्होंने अपनी फिर से शादी की।
हमारी मान्यता किसमें अधिक है?
मूल वृंदा जी में, जो वृंदावन में रहती हैं, उनके पति गोप थे, पावन गोपिया, क्या मुझे ठीक याद है। और कृष्ण की प्रेयसी थी, राधा जी की सहेली थी, दोनों में संभव। जोगमाया में और वृंदा जी में कुछ अंतर है, वो समझाना अंतर तुलसी का और उसका वृंदा का। वृंदा जी का वृंदावन में एकदम डायरेक्ट संबंध है, यद्यपि तुलसी का नाम भी वृंदा है, वृंदा का नाम भी तुलसी ही कहलाती है, वो नारायण की सेवा करती है। और ये डायरेक्ट में ब्रजेंद्र नंदन राधाकांत कृष्ण की करती है, डायरेक्ट इनसे संबंध है। इसलिए मूल अंशिनी है वृंदा और वो उनका प्रकाश है। किंतु जोगमाया के साथ में तुलसी जी का, वृंदा जी का क्या संबंध है? जोगमाया कृष्ण की अप्राकृत ब्रज की सारी लीलाओं का नियमन करती हैं और संचालन करती हैं, या प्रकट ब्रज में भी जितनी कृष्ण की बाल्य लीला से लेकर के अंतिम लीला तक, जब तक कृष्ण द्वारका से अंतर ध्यान नहीं होते हैं, सारी लीलाओं का नियमन करती है। कौन? ये जोगमाया। जोगमाया समाप्त, कृष्ण यदि जगत में भी आते हैं तो जोगमाया को लेकर के उसके द्वारा आच्छादित होकर के आते हैं, जैसे विमुख लोग उनको नहीं समझ सके, साधारण लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं कृष्ण को, क्योंकि जोगमाया के द्वारा वो आच्छादित है। जोगमाया के बिना कृष्ण की कोई भी लीला नहीं चलेगी। बाल्यकाल में यशोदा जी कृष्ण को बांधना चाहती हैं, नहीं बांध पाती है, कृष्ण की पतली कमर और रस्सी लंबी हो गई मिलों, किंतु नहीं बन सकी। ये जोग माया का वैभव है, उनकी क्रिया इसे नहीं बांध सकी और फिर एक छोटी सी रस्सी के द्वारा ही वो बंध गई। ये केस किस लिए हुआ? कृष्ण की भगवत्ता और गोप गोपों की, ब्रजवासियों की, जीव कोटि कोटि ब्रह्मा से भी उन्नत हैं, बलदेव जी के समान शक्तिशाली हैं, वो भी उनकी शक्ति को आच्छादित करके रसमय लीला को कैसे बनाती हैं? ये जोगमाया बनाती है। यशोदा जी को साधारण मत समझना, शंखचूर गोपियों को पकड़ करके ले जा रहा है, भगा करके, जैसे भेड़ को भगाते हैं, और सुबह गोपियां बिल बिला रही हैं। कृष्ण बलदेव जी आकर के शंख उसको मारा था, मार करके इनकी रक्षा। तो राधा जी में कोई शक्ति नहीं, जिसकी शक्ति से कृष्ण इतना काम करते हैं गोपियों, ये और गोपियों में इतनी शक्ति नहीं जैसे शंखचूड़ को मार डालती थी, किंतु इसको कौन आच्छादित करके रखता है?
जोगमाया
उस लीला की रस को संपादन करने के लिए। इसलिए जोगमाया उनकी सारी जितनी शक्तियां, उनकी लीलाएं हैं, सबका वो संचालन वो करती हैं। किंतु वृंदावन में कृष्ण की जो रसमयी गोपियों के साथ में केवल जो होती है लीलाएं, इसका संचालन कौन करता है? ये वृंदा जी करती है, सब लीलाओं का नहीं। राधा कृष्ण में मिलन, उनके ये जो रसमयी रास इत्यादि जो लीलाएं हैं, ये सब लीलाओं का संचालन खास वृंदा जी करती हैं। जोग माया ही समझो, उस रूप में वृंदा जी के रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए वृंदा जी का खास महत्व है। इसलिए ये वृंदावन, वृंदावनम सखी भो वितने कृतिम, भो भो माने यहां तीनों समझ लो, प्राकृत जगत, जीव जगत और अप्राकृत जगत। अप्राकृत जगत भी एक नारायण का लोक, एक कृष्ण लोक। नारायण के लोक में राम, निसिंह, कल्कि, वामन इत्यादि समस्त अवतारों की 24 लीलाएं, लीला अवतार हैं। इन सब की इनकी स्थिति और अपना अपना अलग अलग प्रकोष्ठ है, वो अनंत हैं। और इसके ऊपर में कृष्ण लोक भी तीन प्रकार के कृष्ण लोक, उसके चारों तरफ में एक गढ़खाई है, गढ़खाई माने प्राचीर है, उसी को कहते हैं गोलोक। और गोलोक के भीतर में तीन स्थान, वो कौन कौन? द्वारका, मथुरा और ब्रज। ब्रज गोकुल भी नाम है। इसमें भी, ब्रज में भी बहुत से प्रकोष्ठ हैं। गोकुल जो प्रकाश है, गोकुल माने महाबन, वो जन्म लीला का स्थान। वहां पर रास लीलाएं नहीं होगी, पौगंड की लीलाएं नहीं होंगी। और वृंदावन में क्या है, कई शोर लीला इत्यादि पौगंड लीलाओं का भी ये स्थान है, नंदगांव, बरसाना इत्यादि। और उसमें भी वृंदावन रास इत्यादि का स्थान है, जहां पर की रास होता है। इसलिए वृंदावनम सखी भुवो वितनेत कृति, तीनों लोकों में भूर्भुव स्वः, ये तो साधारण चीज है, ये तीनों ही ब्रह्मांड के अंतर्गत। और वृंदावन इन तीनों से निराला है। वितनोत कृतिम जद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जद देवकी सुत, देवकी माने जसोदा जी के दो नाम, देवकी एक और एक यशोदा। कैसे ऐसे कहते हैं, भागवत में लिखा? अरे हाँ, भागवत नहीं लिखा, भागवत को लिखने वाला नहीं, हरिवंश अर्थात महाभारत का खिल हरिवंश उन्होंने रचना की। महाभारत, महाभारत में ऐसा दिया जाना है, जाओ बैठने तरात हो जाएगी, हम अभी समाप्त कर देंगे, जाओ जाओ। वहां पर आएंगे जन्माष्टमी के बाद में, तो फिर वहां पर हरिकथा, और जन्माष्टमी न हो तो राधाष्टमी में हम सब दिल्ली वालों सबको निमंत्रित करते हैं, विशेष समारोह के साथ में राधाष्टमी होगी। वहां पर दो चार बसे, चार बसे भी हो सके, अंततः दो बसे तो आएंगे ही दिल्ली से, और बहुत ठाट के साथ में हम राधाष्टमी मनाएंगे। और जो जन्माष्टमी के साथ में समय में आ जा सकते हैं तो वो आ जाएं। ठीक,
झूला में अभी?
हाँ, झूला के समय में यदि कोई आना चाहता है तो आ जाए। झूलन झूलन जाओ, अभी जा रहे हैं ना, समय हो गया, 6 बज गया है,
सवा 6 बजे
तो हम भी समझ। अरे भाई सुन, फिर दूसरे दिन करेंगे। अच्छा, तब मैं समाप्त करता हूँ थोड़ी दिन।
दो नाम कैसे बताए?
गोविंद वेणुम अनुमित्व मत्तय मयूर नित्यम। गोविंद की जो उनका देवकी और यशोदा दो नाम थे, कृष्ण जब अपनी बंसी केनी नाद से मत होकर के वेणु पद ध्वनि करते हैं, मयूर नित्यम, मयूर नाचने लगते हैं, और आसपास के जो पक्षी लोग हैं पेड़ों पर बैठे हुए, कौन? सू, कोयल, पपीहे, मोर और सब जितने हैं, वो सब स्थिर होकर के बस देखते हैं, एक तक आंख बंद करके देखने लग जाते हैं। प्रेक्षा दृश्यान, कहां गोवर्धन की तराई में बैठ जाते हैं और सुनते हैं। समस्त सप्तम, समस्त प्राणी, पेड़, पशु, पक्षी सब जाओ। तुम नहीं जाएगा? जा रहा है ना? फिर कब आएगा? अर्चन दीपिका लिए जा रहा है? अर्चन दीपिका,
अर्चन पद्धति लिया आपने?
लिया ना? हाँ, उसको करो। आप विश्वजीत राम से फोन से बात करो, अब इस बार आया 7 दिन था, अगली बार आएगा तो 15 दिन, इसके बाद में 1 महीना, और इसके बाद में कभी नहीं जाना। तो तुम भी रहेगी, तुम जाएगी? अच्छा, हमने अब बंद कर देते हैं, अब इसको मथुरा में हम कंप्लीट करें, आ जाए। आप क्यों नहीं जा रहे? एक घंटा हो गया, 1 घंटा से अधिक बोलेंगे तो हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। 1 घंटा हो गया,
45 मिनट
हो गया अभी रहने को, नहीं तो हमारी तबीयत खराब। आज रहे हम, हमारा भूमि आज आज मैंने उसकी भूमिका बांधी है, अब इसके सनातन गोस्वामी की टीका भूमिका बन गई है। गौ प्रेमानंदे हरि।